ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद तीसरा अध्याय पहला श्लोक क्रमांक 40। अहो प्रथापि ध्रियते अर्भक अर्थे राजऋषि वर्येण विनापि तेन यस्त्वेक वीरो अधिरथो विजिज्ञे धनुर्द्वितीयः ककुभस् चतश्रह। अहो प्रथापि ध्रियतेर्भकार्थे राजर्षिवर्येन विनापि तेन यस्त्वे कवीरो धीरतो विजिज्ञे धनुर्द्वितीय ककुभश्चतश्रह। अहो प्रथापि ध्रियतेर्भकार्थे राजर्षिवर्येण विनापि तेन यस्त्वे कवीरो धीरतो विजिज्ञे धनुर्द्वितीय ककुभश्चतश्रह। अहो हे प्रभो प्रथा कुंती अपि भी ध्रियते जीवन धारण करती हैं अर्भक अर्थे पितृहीन संतान के लिए राज ऋषि राजा पांडु वर्येण सर्वोत्तम विनापि उनके बिना तेन उसके यह वह जो तू परंतु एक अकेले वीर योद्धा अधिरथ सेनापति विजिज्ञे जीत सके धनहु धनुष द्वितीय दूसरा ककुभ दिशाएं चतश्रह चार। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। अहो क्या प्रथा अभी जीवित हैं? उन्होंने इतने दिन केवल अपने पितृहीन पुत्रों के लिए ही जीवन धारण किया, अन्यथा उन राजऋषि पांडु के बिना उनका जीवित रहना असंभव था। अधिरति महाराज पांडु ने केवल एक धनुष की सहायता से अकेले ही चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त की थी। तात्पर्य, पतिव्रता पत्नी अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए सब विधवाएं स्वेच्छापूर्वक अपने मृत पति की चिंता की ज्वलंत अग्नि का वर्ण किया करती थी। भारतवर्ष में यह परंपरा बहुत व्यापक थी, क्योंकि इस देश की सब पत्नियां साध्वी और सती होती थी। कुछ समय पश्चात जब कलयुग का प्रवेश हुआ तो पत्नियां धीरे धीरे अपने पतियों की उतनी अनुगामिनी नहीं रही और विधवाओं के द्वारा स्वेच्छा से सती होने की परंपरा अतीत की ही वस्तु बन गई। अभी थोड़े ही समय पूर्व यह प्रथा कानून से समाप्त कर दी गई, क्योंकि पहले स्वेच्छा से सती होने की परंपरा अब बलपूर्वक संपन्न कराई जाने वाली सामाजिक कुरीति बन गई थी। जब महाराज पांडु की मृत्यु हुई तो उनकी दो पत्नियां कुंती और माद्री चितारोहण के लिए तैयार हो गई, किंतु माद्री ने कुंती से अनुरोध किया कि वे पांचों पांडवों के लिए जीवित रहें, जो उस समय अबोध बालक थे। व्यासदेव के अनुरोध के कारण भी कुंती सती न होने के लिए सहमत हो गई। पति वियोग के दुख को सहते हुए भी कुंती ने जीवित रहने का निर्णय किया। वे पति के वियोग में जीवन का उपभोग करना नहीं चाहती थी, उन्हें केवल अपने बालकों का पालन पोषण करना अभीष्ट था। विदुर ने यहां इस घटना की ओर संकेत किया है, क्योंकि वे अपने भाई की पत्नी कुंती देवी के विषय में सब कुछ जानते थे। उल्लेख है कि महाराज पांडु महान योद्धा थे और धनुष एवं बाण की सहायता से अकेले ही संसार के चारों दिशाओं को जीत लिया था। ऐसे पति के अभाव में कुंती के लिए विधवा के रूप में जीवित रहना असंभव था, परंतु पांचों पुत्रों के लिए उन्होंने उनको ऐसा करना पड़ा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। उद्धव को जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित उनके दिव्य पार्षद, इनके विषय में प्रश्न पूछा जा रहा है। आज गए जो श्लोक, जिसमें महात्मा विदुर श्रीमती कुंती देवी इनके विषय में पूछ रहे हैं, और केवल इतना ही नहीं पूछ रहे कि उनका हाल कैसा है, क्योंकि कुंती महारानी जैसे महाभागवत का हाल पूछना ये बेवाजबी प्रश्न होगा, क्योंकि कुंती महारानी ये ऐसी महाभागवत कि जिन्होंने अपने जीवन में केवल कठिनाइयों को सहन नहीं किया बल्कि प्रार्थना की कठिनाइयों के लिए। एक है कि कठिनाइयों को सहन करना होता है, और कुंती महारानी जैसे भक्त वो कठिनाइयों को मांगती हैं। तो यदि उनका ये हाल पूछा जाए कि उनके हालचाल कैसे हैं, इस भौतिक संसार में जब ऐसा प्रश्न किसी के संदर्भ में पूछा जाता है तो इस आशा में पूछा जाता है कि यदि कोई कठिनाई हो तो उस कठिनाई में वो कैसे हैं, उनके हालचाल कैसे हैं, क्योंकि भौतिक संसार परेशानियों से विपदाओं से घिरा हुआ है, बना हुआ है। अब यदि कोई व्यक्ति कैद खाने में है तो उसका हालचाल क्या पूछा जाएगा? कैदी है, जेल में बंद है, और यदि उसका हालचाल पूछे तो क्या अपना हालचाल बताएगा वो? तो हम जो इस कैद खाने में हैं, एक हम है, हम हमारा हालचाल क्या बताएं यदि प्रश्न पूछा जाए तो? और एक शुद्ध भक्त जो इस भौतिक संसार में आते हैं भगवान के साथ, वो भी अपना हालचाल क्या बताएंगे किसी को? क्योंकि हम पूर्ण रूपेण तीन गुणों के अधीन हैं और शुद्ध भक्त पूर्ण रूपेण दिव्य स्तर पर है। परंतु औपचारिकता से या अंग्रेजी में जिसे कहते हैं फॉर्मेलिटी के तौर पर लोग एक दूसरे को पूछते रहते हैं, कैसे हो। परंतु यहां पर केवल यही प्रश्न पूछा नहीं गया, इसके साथ महात्मा विदुर याद कर रहे हैं कुंती महारानी की शरणागति, जो बहुत महत्वपूर्ण है हमें सीखना। कुंती महारानी की शरणागति, जिसमें कि उनका ये गुण पतिव्रता होना, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि पहले के युगों में पत्नियां इतनी पतिव्रता हुआ करती थीं कि पति के देहांत के समय, यहां पर कहा गया है कि चितारोहण, या आजकल जिसे सती कहते हैं, सती बनती हूं, और ये नाम दिया गया है स्वयं सती देवी, जो उन्होंने चितारोहण किया, अपने ही शरीर को अपनी तपस्या से जला दिया, क्योंकि उनके पति का अपमान हुआ था, शिव जी का अपमान हुआ था। चल प्रभुपाद खैर लिखते हैं कि कलयुग में स्थिति बहुत अलग है, और कलयुग जैसे अग्रसर हो रहा है तो स्थिति बहुत ही ज्यादा विपरीत दिशा में जा रही है। एक तो पति वैसे होने चाहिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि यदि पत्नियों से या विधवाओं से ये अपेक्षा की जा रही है तो उससे पहले पति भी पांडु जैसे होने चाहिए, पति भी शिवजी जैसे होने चाहिए, तब जाकर उन पत्नियों से ये अपेक्षा की जाएगी। जैसे अक्सर पिता चाहते हैं कि पुत्र राम के जैसे हों, और वो राम का उदाहरण देते हैं कि देखो एक थे राम जिन्होंने अपने पिता के लिए 14 वर्ष वनवास लिया, और एक हो तुम, तो फिर पुत्र भी कह देता है एक थे दशरथ और एक है आप। यहां पर प्रश्न ये है कि कुंती महारानी के लिए कौन सी चीज ज्यादा बड़ी तपस्या थी, पति के साथ चितारोहण करना या जीना। अब हमारे लिए यदि हमें यह प्रश्न पूछा जाए कि हमारे लिए इन दोनों में से कौन सा ज्यादा दुष्कर है, कि जीवित शरीर को चिता में अंदर सम्मिलित कर देना, वो कल्पना भी करना बहुत भयावह है। यहां पर यह बताया गया है कि कुंती महारानी के लिए वो नहीं करना तपस्या थी, तो जब हम कुंती महारानी और ऐसे महान भागवतों की चर्चा करते हैं, इनके विषय में श्रवण करते हैं, तो साधना भक्ति का मर्म क्या है यह समझ में आता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार हम साधक जो साधना में लगे हैं, भगवान श्री कृष्ण को और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को साध्य बनाया है हम लोगों ने, तो हमारी साधना भक्ति का मर्म क्या है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ साधना भक्ति। तीन चीजों में ये समझ में आएगा, यज्ञ, दान और तप। हमारे शास्त्रों में इन तीन विषयों के बारे में कहा गया है। साधना भक्ति में होना चाहिए यज्ञ, दान और तप। अब यज्ञ, हम हमारी साधना भक्ति में यज्ञ किस प्रकार से कर रहे हैं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, ये है यज्ञ। दान, प्रचार, और प्रचार में सहायक होकर वो है हमारे साधना भक्ति का दान, और तप, नियमों का पालन करना, विधि विधानों से जीवन जीना, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना, तप। तो यज्ञ, दान और तप। अब यज्ञ, दान और तप, पूरी हमारी जो साधना भक्ति है, साधना भक्ति के जितने भी अंग हैं, उनको हम इन तीन श्रेणियों में डाल सकते हैं। तो अब उद्देश्य क्या है? यज्ञ, दान और तप, इनके पालन करने का उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम उद्देश्य है अपने आप को शुद्ध करना, अपने हृदय को शुद्ध करना। ये सबसे पहला उद्देश्य है। और इससे ऊंचा उद्देश्य यज्ञ, दान और तप के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। तो अब अपने आप को शुद्ध करना और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, इन दोनों में कुछ विरोधाभास है या समानताएं हैं? कि मैं साधना कर रहा हूं, यज्ञ दान तप में लगा हुआ हूं, उद्देश्य है अपने हृदय को मैं साफ करूंगा, चेतो दर्पण मार्जनम, और फिर हरे कृष्ण महामंत्र जो हम जप करते हैं उसका अर्थ क्या है? कि हे राधा कृष्ण, मुझे आपकी सेवा में लगाइए आपकी प्रसन्नता के लिए। तो अब ये दोनों उद्देश्य, क्या ये दो लेवल पर हैं? क्या दोनों में विरोधाभास है? समान है। कैसे? तो साइमल्टेनियसली हम, हाँ, भगवान को प्रसन्न करना। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने चेतो दर्पण मार्जन क्यों कहा? चित्त का मार्जन कीजिए। हाँ, ये दोनों बात सही है कि हमारा उद्देश्य अंततः भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। जैसे कि यदि आपको नासिक से बंबई जाना है तो उद्देश्य है आपका गंतव्य स्थान है बंबई, और जो भी साधन आपको बंबई पहुंचाए वो भी आपके उद्देश्य का एक भाग है, आपके ध्येय का वो भी एक भाग बन जाता है। चाहे आप ट्रेन से जाओ, चाहे चलकर जाओ, चाहे गाड़ी से जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने हृदय को शुद्ध करेंगे। तो इसलिए हम ऐसे उदाहरण, जैसे कुंती महारानी का उदाहरण यहां पर दिया गया है, ये ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने यज्ञ, दान और तप को भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपनाया। अब कुंती महारानी जैसे भक्त, उनका उद्देश्य ये नहीं कि अपने आप को शुद्ध करें, वो तो शुद्ध हैं, वो तो नित्य पार्षद हैं भगवान के। तो यहां पर कुंती महारानी का त्याग बताया गया है कि उनके पास विकल्प थे। कौन से विकल्प? दो विकल्प, एक तो अपने पति के साथ चितारोहण, सती बन जाना, या जीवित रहकर अपने पुत्रों को संभालना। इसलिए जब हम भक्ति में प्रगत होते हैं या भक्ति के प्रगत स्तर को पालन करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें विकल्प क्या होते हैं? विकल्प ये नहीं कि सही और गलत में क्या अपनाना है, विकल्प ये है कि दो सही वस्तुओं में से कौन सी वस्तु मुझे अपनानी है। जैसे कि दामोदर लीला में माता यशोदा भगवान को अपना स्तनपान करा रही है और रसोई घर में दूध उबल रहा है, तो अब भगवान श्री कृष्ण की सेवा दो प्रकार से वो कर पा रही थी, ये उनकी इच्छा थी कि अपना दूध भी पिलाना वो भी सेवा है, और उस दूध को भी संभालना वो किसके लिए? वो भी भगवान कृष्ण के लिए। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शुद्ध भक्त के सामने भी द्वंद्व आते हैं, हमारे सामने भी द्वंद्व आते हैं। अंतर क्या है? हमारे द्वंद्व क्या हैं कि अभी सोऊं या जप करूं, अभी खाऊं या प्रोग्राम के लिए जाऊं। हमारे द्वंद्व हैं, जैसे कि भगवान ने दुर्योधन के सामने द्वंद्व रखा था ना, कि मैं या मेरी नारायणी सेना। तो भगवान और ये प्रकृति। परंतु शुद्ध भक्तों के सामने द्वंद्व भी आते हैं, कैसे? जैसे माता यशोदा के सामने कि भगवान श्री कृष्ण की दोनों सेवाएं हैं, और भगवान श्री कृष्ण की इन दोनों सेवाओं में से कौन सी सेवा। ऐसा नहीं कि वो चयन कर रहे हैं कि एक सेवा के बदले दूसरी सेवा, नहीं, दोनों सेवा करना चाहती हैं, परंतु पहली कौन सी सेवा करूं। तो एक है कि जब त्याग स्वेच्छा से किया जाए, और एक है जब त्याग अनिच्छा से होता है। जैसे कुंती महारानी का उदाहरण है, उसी प्रकार महाभारत में उदाहरण है गांधारी का, कि गांधारी वो भी ऐसी पतिव्रता स्त्री, हालांकि दुर्योधन की वो माता, धृतराष्ट्र की वो पत्नी, परंतु फिर भी उनका गुणगान किया गया है महाभारत में उनके इस गुण को दर्शाते हुए, पतिव्रता होने का गुण। कि जब पता लगा कि पति जन्म से अंधे, तो एक तो वो राजी हो गई ऐसे पति के साथ शादी करने के लिए जो जन्म से अंधे। जैसे हमारे एक जान पहचान के थे, तो एयरफोर्स की बात है, तो वो भी अंधे थे, तो उन्होंने एक अपेक्षा की एक ऐसी युवती के साथ विवाह करने का जो कि बहुत ही बड़े परिवार से और पढ़ी लिखी, दिखने में भी सुंदर। तो फिर भी इनकी अपेक्षा कि मेरा विवाह, जैसे धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ, हालांकि धृतराष्ट्र तो खैर उस समय राजपद संभाले हुए थे, परंतु ये तो साधारण सा एक था ये व्यक्ति, परंतु इसकी अपेक्षा ऐसी थी, और इसकी इतनी हिम्मत जाके इसने प्रपोज भी किया। तो फिर वो हंसने लगी। उसने कहा कि आप जानते हैं ना, आप अंधे हैं। तो इसने कहा, इसने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। इसने कहा, हाँ मैं देख नहीं सकता, तुम तो देख सकती हो ना, तो तकलीफ मेरी तरफ से है, तुम्हारी तरफ से क्या तकलीफ है शादी करने में? तो वो कंफ्यूज हो गई उत्तर सुन के। तो यहां पर गांधारी स्वेच्छा से वो धृतराष्ट्र से एक तो विवाह की, और फिर ये कि पति को बुरा लगेगा कि मैं देख पा रही हूं मेरे में कुछ ऐसे गुण हैं जो मेरे पति में नहीं, तो फिर स्वेच्छा से उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। इसे कहते हैं वास्तविक रूप में वैराग्य, वॉलंटरिली सैक्रिफाइसिंग समथिंग, और वो भी उस समय और उस स्थिति में जब आपके पास साधन है, जब आपके पास सारे साधन हैं, और उस समय उन सुविधाओं को, उन साधनों को, उन अपॉर्चुनिटीज को जब आप त्यागते हो भगवान की प्रसन्नता के लिए, तब भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए जब श्रीधर कोलवेच, वो चैतन्य महाप्रभु को अर्पित करते, जो कुछ उनकी आमदनी से, जो कुछ वो चैतन्य महाप्रभु को अर्पित करते, और उनकी आमदनी से जो वो गंगा देवी की पूजा करते, यदि उन्हें एक रुपया मिलता तो उसमें से वो 12 आना वो गंगा देवी की पूजा और इन सब में लगाते, और 4 आना केवल वो अपने लिए रखते। तो चैतन्य महाप्रभु की नजरों में ये ज्यादा बड़े त्यागी, कोई बड़े राजा की तुलना में, जो कि अपने लिए 4 आना रखते और भगवान के लिए 12 आना। हालांकि एक राजा का 12 आना बहुत बड़ा हो जाता है, परंतु भगवान ये नहीं देखते, भगवान उसका प्रोपोर्शन देखते हैं। कि ये कहा गया है कि भगवान ये नहीं देखते आपने क्या अर्पित किया है, भगवान ये देखते आपने क्या अपने लिए रख लिया है। He doesn't see what you have put in the donation box. He sees what is remaining in your wallet. तो यहां पर त्याग या वैराग्य की बात आ रही है। तो गांधारी, उन्होंने स्वेच्छा से अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। जो 6 गोस्वामी, इनके विषय में बताया गया है कि स्वेच्छा से उन्होंने अपने पद को त्यागा और चैतन्य महाप्रभु की सेवा में वो लगे। इसलिए हाल ही में मुझे एक भक्त प्रश्न पूछ रहे थे मुंबई में कि ये जो भागवत में इससे सारे उदाहरण हैं और ये जो हमारी परंपरा में इतने आचार्य हुए, जैसे श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, 6 गोस्वामी, तो इनके प्रति एक जो हमारा फैसिनेशन होता है, हम इनको रोल मॉडल बनाते हैं, तो इनमें और इस भौतिक संसार के जो रोल मॉडल है उनमें अंतर क्या है? उनमें अंतर ये है कि जो भौतिक संसार के तथा कथित जो रोल मॉडल हैं, इनके प्रति कभी आदर भावना नहीं आती। चाहे कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हो, बहुत बड़ा उद्योगपति है, कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्स स्टार है, सिनेमा स्टार है, इनके प्रति आदर भावना क्यों नहीं आती? क्योंकि इनके अंदर हम कोई त्याग नहीं देख रहे, तो भोग देख रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का भोग देखकर हमें आदर भावना नहीं आएगी, बल्कि ईर्ष्या पैदा होती है इस भौतिक संसार में। परंतु श्रील प्रभुपाद और ऐसे आचार्यों के जीवन को जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आदर की भावना क्यों जागृत होती है? क्योंकि इन्होंने दूसरों के लिए अपना जीवन बलिदान किया। जैसे मदर टेरेसा, ऐसे महानुभाव भी जिन्होंने, जिनके पास बहुत से अपॉर्चुनिटीज थे, परंतु उनको त्याग कर इन्होंने दूसरों के लिए बलिदान किया अपना जीवन। जैसे यहां पर कुंती महारानी ने अपने बच्चों के लिए अपना वो जो उनका एक निर्णय था उसको बदल कर वो इसका चयन किए। तो अब क्या त्याग केवल भक्त करते हैं? अभक्त त्याग करते हैं कि नहीं करते? त्याग की भावना केवल भक्तों में है या अभक्तों में भी है? अभक्तों में भी है। हिरण्यकश्यपु ने बहुत बड़ा त्याग किया, 100 स्वर्गीय वर्ष जो उसने तपस्या की बिना खाए पिए सोए, बहुत बड़ी तपस्या थी उसकी। एक भक्त का त्याग शरणागति पर निर्भर रहता है, और एक अभक्त हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस का त्याग अहंकार, सैक्रिफाइस ऑफ अ डिवोटी इज बेस्ड ऑन सरेंडर, सैक्रिफाइस ऑफ अ नॉन डिवोटी इज बेस्ड ऑन फॉल्स ईगो। तो अब जब हम सरेंडर या शरणागति की बात करते हैं, और शरणागति के बलबूते पर एक भक्त वैराग्य के जीवन को अपनाता है, तो हम आज कुछ उदाहरण लेना चाहेंगे जिसमें ऐसे भक्त जिन्होंने शरणागति के बलबूते पर उन्होंने त्याग की भावना दिखाई। अब त्याग की भावना यह नहीं कि केवल चीजों को छोड़ना, त्याग की भावना यह है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए उस शरणागति के भाव में अपनाना भी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सर्विंग ड्यूरिंग द नीड ऑफ द आवर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सेवा करना तो हां, यह हमारा निज धर्म है, स्वधर्म है सेवा करना, परंतु कौन से समय हम सेवा करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने अपने एक लेख में लिखा है कि हम गौड़िया वैष्णवों के लिए सर्वोच्च तीर्थ स्थान है कुरुक्षेत्र, वृंदावन नहीं, मायापुर भी नहीं, जगन्नाथपुरी भी नहीं। वो कहते हैं हम गौड़िया वैष्णवों के लिए सर्वोच्च स्थान है कुरुक्षेत्र, क्योंकि कुरुक्षेत्र में श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों की हमारी सहायता सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि वहां से भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन लाना है उन्हें। सो श्रीमती राधा रानी नीड्स अस द मोस्ट इन कुरुक्षेत्र, नॉट इन वृंदावन। तो हां, हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राधा कृष्ण आपकी सेवा में लगाइए। तो जब हम ये प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें राधा कृष्ण की सेवा में लगना है उनके टर्म्स पर, हमारे टर्म्स पर नहीं। हमारी प्रार्थनाओं में ये प्रार्थना भी होनी चाहिए कि हम हरे कृष्ण राधा कृष्ण की सेवा में उनके टर्म्स पे लगना चाहते हैं। ये नहीं कि मैं अपने तरीके से आपकी सेवा में लगूंगा और उसे आप स्वीकार कर लेना जिस किसी तरीके से। जैसे कि हम रामायण से उदाहरण लें कि प्रभु श्री राम, उन्होंने इतना वियोग दर्शाया जटायु के वध के पश्चात कि उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, मुझे सीता का इतना वियोग नहीं हो रहा जितना जटायु के वध का वियोग हो रहा है, क्योंकि जटायु ने प्रभु श्री राम की सेवा कब की? जब सबसे ज्यादा उनको आवश्यकता थी उस सेवा की. When Lord Ram needed the service most, that was the time when Jatayu served Hanuman ji. हनुमान जी के विषय में प्रभु श्री राम अपनी आंखों में आंसू ला के कृतज्ञता का भाव दर्शा रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की सेवा उस समय की जब प्रभु श्री राम को सबसे ज्यादा आवश्यकता थी. इसलिए राम दरबार में हनुमान जी बहुत विचलित रहते हैं कि यहां पर प्रभु श्री राम आपके लिए मेरी कुछ ऐसी सेवा दीजिए कि मुझे लगे कि आई हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मिशन ऑफ लॉर्ड राम. तो एक है हमारी साधना, और वो क्या है, खुद के शुद्धिकरण के लिए, और एक है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन की सेवा. अब इसमें यज्ञ दान तप दोनों में आ जाता है, परंतु जैसे कि हम हनुमान जी का उदाहरण ले तो हनुमान जी तो नित्य रूप से राम जी का नाम लेते ही रहते हैं, परंतु जब प्रभु श्री राम को माता सीता का समाचार प्राप्त करना था और अपना समाचार माता सीता की पहुंचाना था, तो उस समय जो हनुमान जी का राम नाम का जप था वो सिद्ध हुआ प्रभु श्री राम के आंदोलन में सेवा करने से. तो मिशन क्या था प्रभु श्री राम का, सीता को खोज कर लाना. चैतन्य महाप्रभु का मिशन क्या है, वही मिशन है. प्रचार का मिशन क्या है, सीता देवी जो बद्ध जीवों के हृदय में जो भक्ति है जिसको उनके ही हृदय के रावण ने चुरा लिया है, वानर सेना. एक और उदाहरण, वानर सेना उनके पास था क्या प्रभु श्री राम को सहायता देने के लिए, कुछ नहीं था. बस सुग्रीव और उनके जो वानर थे और रावण के लंका के सामने, रावण की सेना के सामने इनके पास था क्या. परंतु प्रभु श्री राम इतने कृतज्ञ रहे इन वानरों के प्रति, तो उन्होंने इन वानरों को अपना आश्वासन दिया कि अगले मेरे अवतार में मैं तुम्हारी सेवा करूंगा. तुम लोगों ने मेरी सेवा की है, मेरे अगले अवतार में मैं व्यक्तिगत रूप से तुम वानरों की सेवा करूंगा, और स्वयं भगवान अपने हाथों से इनको माखन खिलाया करते थे. दामोदर लीला में भी वर्णन है कि भगवान स्वयं अपने हाथों से वानरों को खिला रहे थे. अपने पिछले युग, अपने पिछले अवतार को ध्यान में रखते हुए, तो सेवा को यदि हमें भगवान श्री कृष्ण और आचार्यों की सेवा को यदि हमने हमें सबसे ज्यादा असरदार इफेक्टिव बनाना है, तो हमें उस समय उस जगह पर सेवा करनी है जहां पर सबसे ज्यादा आवश्यक है वो सेवा. जैसे भगवान ने पूतना का वध किया, पूतना के वध के तुरंत पश्चात गोपियां वो भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण के लिए काउ प्रोडक्ट्स, आज शाम को भी लेक्चर काउ प्रोडक्ट्स के ऊपर है, तो उन्होंने गोमूत्र, गोबर, गोरज, गोपुच्छ, इन सब से भगवान श्री कृष्ण के शरीर की सुरक्षा की. और उस समय भगवान श्री कृष्ण एक अर्भक बालक थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये गौओं ने मेरी सहायता की है जब मुझे सबसे ज्यादा आवश्यक है इनकी सुरक्षा. हालांकि वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परंतु उनका भाव ये था कि दीज काउज हैव सर्व्ड मी when I needed it the most. तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने यह प्रण लिया कि आज से मेरा नाम होगा गोपाल, इन गौओं का मैं पालक पालन करूंगा आज से। और वो भी कथा है, जब गौओं को चराने का दिन आया और उस दिन सारे गौ वृंदावन के, उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण चप्पलें नहीं पहन रहे, क्योंकि उन्होंने माता यशोदा से पूछा कि गौओं को चप्पलें पहनाओ, यदि मुझे कंकड़ चुभेंगे तो इनको भी तो चुभेंगे। तो उस समय भी गौओं ने सेवा क्या की, रात में जाके पूरे वृंदावन के जितने सारे कंकड़ है उनको अपने खुरों से मार मार कर रेती में परिणित कर दिया। लक्ष्मण एक और उदाहरण है, जिन्होंने प्रभु श्री राम की सेवा अयोध्या से ज्यादा, जब वो 14 वर्ष वनवास में थे वहां पर उन्होंने जो सेवा की, इसलिए उनका गुणगान हर समय, लक्ष्मण का गुणगान हर समय प्रभु श्री राम जब वनवास में थे उस स्थिति में होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब इस भौतिक संसार में आते हैं और इस भौतिक संसार में जब वो अपने ऐसे पार्षदों को देखते हैं जिन्होंने आध्यात्मिक संसार को त्याग कर इस भौतिक संसार में भगवान श्री कृष्ण के प्रचार कार्य में वो लगे हुए हैं, तो भगवान कहते हैं कि इनसे ज्यादा प्रिय मुझे और कोई नहीं। जैसे कि प्रहलाद महाराज, वासुदेव दत्त, ये ऐसे भगवान के पार्षद जिन्होंने प्रार्थना की है भगवान से कि हमें यहां रहने दो और नरकों में जाने दो, सड़ने दो, हम यहां पर तब तक रहेंगे जब तक कि हरेक बद्ध जीव आपके धाम तक नहीं पहुंचता। इसे कहते हैं वास्तविक रूप में शरणागत होना। जैसे कि आप देखो आर्मी में या किसी भी सेना में किसी सैनिक को परमवीर चक्र क्यों मिलता है, ये जितने भी परमवीर चक्र मिले हुए हैं अलग अलग सैनिकों को, इनकी कहानी यदि आप पढ़ोगे तो इनको परमवीर चक्र इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने देश की सेवा उस समय की जब सबसे ज्यादा आवश्यकता थी देश को इनकी सेवा की। ऐसे समय शत्रु पक्ष को उन्होंने मारा, जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन था। अर्जुन का उदाहरण है कि अर्जुन क्रिटिकल सिचुएशन में भागना चाहते थे और भगवान ने अर्जुन का गुणगान पूरे जीवन भर इसलिए आगे चलकर किया क्योंकि अर्जुन ने भगवान की बात मानकर उस समय भगवान की सेवा की जब भगवान चाहते थे धर्म की स्थापना करना। श्रील प्रभुपाद, अब श्रील प्रभुपाद का उदाहरण देखिए कि श्रील प्रभुपाद ने सन्यास लिया, ये नहीं कि उन्हें मान सम्मान मिलेगा या उनकी पत्नी ठीक से उनकी देखभाल नहीं कर रही तो त्रस्त आकर चलो सन्यास ले लो। सन्यास लेने के भी बहुत से कारण हो सकते हैं कि सन्यासी बनने के बाद फिर सभी आपको दंडवत करेंगे, महाप्रसाद का प्लेट सबसे पहले आपको मिलेगा, और यदि कोई गृहस्थ से सन्यास बन रहा है तो बहुत से कारण होते हैं सन्यास लेने के फिर तो। परंतु श्रील प्रभुपाद ने सन्यास लिया प्रचार करने हेतु, और वो जब गए अमेरिका, वहां पर भी उन्होंने पहले भारत में देखा कि यहां पर मैं कितना प्रचार कर पाऊंगा, कितना मैं कर सक रहा हूं, परंतु यहां पर जब उन्होंने देखा कि कोई उनकी बात को उतनी महत्वपूर्ण तरीके से नहीं ले रहा, तब वो पाश्चात्य देश गए और वहां पर हालांकि भारतीयों की तुलना में ये हिप्पी किसी भी प्रकार की संस्कृति में स्थित नहीं थे, परंतु श्रील प्रभुपाद हर समय अपनी कृतज्ञता इनके प्रति व्यक्त किया करते थे। एक समय तो श्रील प्रभुपाद भारत में जब आए तो भारत में कुछ ऐसे पत्रकार श्रील प्रभुपाद के साथ बहुत वाद विवाद कर रहे थे कि ये क्या हरे कृष्ण महामंत्र इन हिप्पियों को दे दिए, इनको आप दीक्षा दे रहे हो, इनको ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हो, गायत्री मंत्र जप करने के लिए इनको आपने अनुमति दे दी। अरे ये तो हम भारतीयों के लिए। तो श्रील प्रभुपाद को समय इतना क्रोध आया, श्रील प्रभुपाद ने कहा जब मैं आप भारतीयों को ढूंढ रहा था ना, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को फैलाने के लिए जब मैं आप भारतीयों को ढूंढ रहा था, तब आप सब भारतीय टीवी देखने में और चाय पीने में मग्न थे, और उस समय इन हिप्पियों ने मेरी सहायता की, इन हिप्पियों ने मेरी सहायता की श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रचार को बढ़ाने के लिए। और किस मुंह से श्री प्रभुपाद कह रहे, किस मुंह से तुम लोग कह रहे हो कि ये हरे कृष्ण महामंत्र या ये गायत्री मंत्र ये हमारा अधिकार है, इसके ऊपर ये इसका अधिकार उसके ऊपर है, उसी को मिलना चाहिए जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में उस समय मेरी सहायता की जब सबसे ज्यादा मुझे आवश्यकता थी। इसलिए ऐसे कितने श्रील प्रभुपाद के शिष्य जो उनको छोड़कर चले गए, आगे चलकर उनको छोड़कर चले गए, परंतु श्रील प्रभुपाद वो कभी भूले नहीं। श्रील प्रभुपाद उनको जब 15 साल बाद भी मिले, जो छोड़ के चले गए प्रभुपाद से मिलने आए, और वो इतने शर्मिंदा थे प्रभुपाद के सामने कि उन्होंने प्रभुपाद को छोड़ दिया, नियम तोड़ना शुरू कर दिया। प्रभुपाद ने कहा नहीं, योर सर्विस अन टू द मिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु इज ऑलवेज इटर्नल एंड मोर प्लीजिंग बिकॉज यू सर्व द मिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु एट द टाइम द नीड ऑफ द आवर when it was most required, and I cannot forget that for the rest of my life. तो श्रील प्रभुपाद उन्होंने संन्यास लिया जब सबसे ज्यादा उनके गुरु महाराज को आवश्यकता थी कि कोई ऐसे उनके सन्यासी शिष्य जो कि इसका प्रचार पूरे विश्व भर करें। यह एक उदाहरण श्रील प्रभुपाद का, और चैतन्य महाप्रभु ने भी संन्यास इसी को ध्यान में रखते हुए लिया। चैतन्य महाप्रभु को संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और वो भी मायावाद संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। हाल ही में हिज होलीनेस राधानाथ महाराज कलकत्ता में थे, तो वहां पर उनकी किताब का लॉन्च था, और उनकी किताब के लॉन्च पे आए थे सौरव गांगुली, सब लोग जानते हैं ना। कलयुग के महाजन तो सौरव गांगुली आए थे महाराज की बुक लॉन्च, महाराज तो जानते नहीं थे सौरव गांगुली कौन है। तो महाराज पूछे कि कौन है ये, तो फिर बताया गया कि बहुत फेमस क्रिकेटर, इंडिया का कैप्टन रह चुका है ये क्रिकेट टीम का। तो ये बताया गया कि महाराज सभी बहुत इनका आदर सत्कार सम्मान करते हैं। तो महाराज ने कहा कि श्री चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व उन्होंने इस हरे कृष्ण महामंत्र के प्रचार के लिए संन्यास लिया, और वो भी मायावाद संप्रदाय में। क्यों? क्योंकि उस समय मायावाद सन्यासी, एक मायावादी सन्यासी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। तो महाराज ने कहा कि यदि श्री चैतन्य महाप्रभु अभी अवतरित होते तो क्रिकेट स्टार बनते। व्हाटएवर इट टेक्स टू प्रीच। उनका पॉइंट क्या था कि उनको सन्यासी बनने से कोई आसक्ति नहीं थी, या वो क्रिकेट स्टार बनने में भी कोई आसक्ति उनकी नहीं रहती, उनकी आसक्ति किसमें? प्रचार। जैसे भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर को, वो तो इतने रेवोल्यूशनरी प्रीचर थे कि भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर को उनके शिष्यों ने कहा कि यदि आप हमें पाश्चात्य देश भेज रहे तो वहां पर हम खाएंगे क्या, वहां पर तो केवल मांसाहार है। तो उन्होंने यहां तक कह दिया, ईट मीट बट प्रीच। अब इसका अर्थ ये नहीं कि वो शुरू कर दें, परंतु एम्फेसिस किस पे है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया क्योंकि दैट वॉज द नीड ऑफ द आवर, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को गृहस्थ बनने के लिए कहा, क्यों? बिकॉज दैट वॉज द नीड ऑफ द आवर। क्यों? क्योंकि प्रचार के लिए उन्होंने नित्यानंद प्रभु से कहा कि वहां पर तुम प्रचार कर पाओगे एक गृहस्थ के रूप में, जहां पर मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फोकस क्या? फोकस यही कि भगवान को कैसे प्रसन्नता दी जाए, चाहे सन्यासी बनकर, चाहे गृहस्थ बनकर, चाहे कुछ भी। ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो, मैं ये सब कुछ नहीं हूं। ये सारी पदवियां, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, कुछ भी नहीं। मेरी एक ही पदवी है कि आपको मैं कैसे प्रसन्न करूं, हे कृष्ण। श्रीमद् भागवत में एक और उदाहरण है महाराज प्रियव्रत का। महाराज प्रियव्रत वो किनके पुत्र थे? स्वयंभू मनु। और महाराज प्रियव्रत के भाई कौन? महाराज उत्तानपाद। तो स्वयंभू मनु के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो महाराज उत्तानपाद उन्होंने तो राजगद्दी संभाली, ध्रुव महाराज की कथा वहां से प्रारंभ होती है। और प्रियव्रत वो ब्रह्मचारी बन गए, वो भी किसके अंडर? सोचिए, ब्रह्मचारी भी बने महाराज प्रियव्रत तो किसके अंडर? नारद मुनि, जो कि उस समय के सबसे एक्सपर्ट रिक्रूटर, ब्रह्मचारी रिक्रूटमेंट बोर्ड के HOD नारद मुनि, जिन्होंने दक्ष प्रजापति के 11,000 बेटों को, सोचिए, BT ट्रेनिंग में लगाया, 11,000। तो नारद मुनि के अंडर प्रियव्रत, पर्सनल नारद मुनि उनको गाइड कर रहे हैं प्रियव्रत महाराज को वैराग्य में, रिनाउंस्ड ऑर्डर में। और उस समय नीड ऑफ द आर कि राजा कोई नहीं था, तो स्वयंभू मनु आए, पहले तो ढूंढते हुए कि कौन सी पहाड़ी पे, कौन सी गुफा में, ये कौन से आश्रम में, ब्रह्मचारी आश्रम में है। तो स्वयंभू मनु आते हैं और वहां पर नारद मुनि स्वयंभू मनु से कहते हैं कि भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये तो अभी, ये थोड़ी वापस वहां जाएंगे शादी वादी ये सब करना, राजगद्दी संभालना नहीं। और स्वयं महाराज प्रियव्रत भी वो नहीं चाहते थे, तो फिर ब्रह्मा जी को आना पड़ा। अब ब्रह्मा जी इन दोनों के पिता, किन दोनों के पिता? नारद मुनि के भी पिता और स्वयं वो मनु के भी पिता। तो ब्रह्मा जी जब वहां, सोचिए कि महाराज प्रियव्रत को ब्रह्मचारी आश्रम से गृहस्थ आश्रम में ले जाने के लिए कौन कौन आए? स्वयं भू मनु, स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी। तो उन्होंने देखा कि नारद मुनि, वो भी स्वयं मान गए कि इस समय आवश्यकता है कि महाराज प्रियव्रत राजगद्दी को संभाले। तो महाराज प्रियव्रत वो ऐसे शरणागत कि वो फिर इनकी बात मान गए। तो इन सब उदाहरणों से जैसे नित्यानंद प्रभु गृहस्थ आश्रम अपनाए, प्रियव्रत महाराज गृहस्थ आश्रम अपनाए, चैतन्य महाप्रभु संन्यास अपनाए, श्रील प्रभुपाद संन्यास आश्रम को अपनाए, इन सब के पीछे एसेंस क्या है? सर्विंग कृष्णा ड्यूरिंग द नीड ऑफ द आवर। जैसे इस श्लोक में आज कुंती महारानी को कहा गया कि कुंती महारानी के सामने उनकी इच्छा तो यही थी कि वो उस वियोग में अपने पति के साथ सती बन जाए, नहीं, इसलिए कुंती महारानी का गुणगान माद्री से ज्यादा हुआ है। माद्री भी पांडु की ही पत्नी, और माद्री सती बनी, और हमारे लिए तो वो भी बहुत ऊंचा स्तर है एक त्याग का, परंतु गुणगान किसका होता है? कुंती महारानी का ज्यादा गुणगान होता है, क्योंकि कुंती महारानी शरणागत हुई आदेशों को पालन करते हुए। उनको जो अच्छा लगा उनको उसको साइड में रखते हुए केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने उसका चयन किया। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद जो तात्पर्य में लिखते हैं कि पतिव्रता जो स्त्री होती है उसका एकमेव उद्देश्य होता है अपने पति को प्रसन्न रखना। इसके संदर्भ में चैतन्य चरितामृत में एक कथा है जो अंतिम श्लोक है शिक्षाष्टकम का, जिसमें आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम श्रीमती राधारानी का भाव बताया गया है। इसके संदर्भ में एक कथा सुनाई गई है एक दंपति की, जिसमें पति कुष्ठ रोग से पीड़ित और कुष्ठ रोग से पीड़ित ये पति, इसकी इच्छा एक वैश्या के साथ संभोग करने की। उस समय के उस एक प्रांत की वैश्या जिसका नाम था लक्ष्य हीरा, और इस वैश्या का नाम लक्ष्य हीरा इसलिए क्योंकि यदि इस वैश्या के साथ किसी को संग करना है तो उसे हीरा अर्पित करना होगा लाखों रुपए का, इसलिए उसका नाम था लक्ष्य हीरा। तो ये उसकी रकम थी, और ये पति, ये जो दंपति में ये जो पति, ये इतना आकृष्ट और इतना ज्यादा इच्छुक इस लक्ष्य हीरा के साथ संग करने के लिए, तो पत्नी जान गई तो इसकी योग्यता क्या है? एक तो कुष्ठ रोगी और रास्ते का भिखारी, इसकी योग्यता क्या है कि ये उस लक्ष्य हीरा को देख भी पाए? संग करना तो दूसरी बात है। तो इस कुष्ठ रोगी पति की जो पत्नी, उन्होंने क्या किया, वो इस लक्ष्य हीरा के पास गई और उन्होंने कहा लक्ष्य हीरा से कि मेरे पति, उनकी इच्छा है कि वो आपके साथ संग करना चाहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले एक पत्नी जा रही है पति की ऐसी इच्छा पूरी करने के लिए, किसके पास? वैश्या के पास। तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई सबसे पहले ये वैश्या। तो उसने कहा कि भाई, जानते हो ना कि मूल्य क्या चुकाना है? हाँ, तो है इतना मूल्य। तो मूल्य तो नहीं इतना चुकाने के लिए, तो ये तैयार हो गई इनसे पूछकर कि मुझे आप बताइए कि ये वैश्यावृत्ति मैं करना चाहती हूं उतने पैसे इकट्ठा करने के लिए। तो ये स्वयं, ये पत्नी वैश्या बनी। ये शरणागति की पराकाष्ठा है यहां पर कि वो वैश्या बनी ताकि वो इतने रकम इकट्ठा कर सके। किस लिए? वो एक लक्ष्य हीरा खरीद कर इस वैश्या को देने के लिए, ताकि वो इसका जो कुष्ठ रोगी पति है वो प्रसन्न हो सके इसके संग में। तो उसने ये सब कुछ किया, बहुत समय तक वो वैश्या बनकर इतनी रकम उसने इकट्ठा की, और फिर ये पति उस समय इतना पीड़ित कुष्ठ रोग से कि वो चल भी नहीं पा रहा था वैश्या तक जाने के लिए, तो इस पत्नी ने अपने हाथों में उठाया, अपने हाथों में उठाकर अपने इस कुष्ठ रोगी पति को ले जा रही है इस वैश्या के पास। तो यहां पर ये कथा बताई गई है कि जिसमें एक पतिव्रता स्त्री कि शरणागति क्या होती है अपने पति को प्रसन्न करने के लिए। श्रीपाद रामानुजाचार्य इनके जीवन की भी कथा है कि इनके एक शिष्य ऐसे ही निर्धन दंपति, और रामानुजाचार्य ने संदेश भेजा कि मैं प्रसाद के लिए आ रहा हूं। तो जो पति वो तो रास्ते के एक भिखारी मधुकरी पे वो जीते थे, तो उनको जब पता लगा कि रामानुजाचार्य उनके गुरुदेव आ रहे हैं उनके घर प्रसाद के लिए, तो दोनों चिंतित, पति पत्नी अब दोनों चिंतित कि रामानुजाचार्य को क्या खिलाएंगे, हमारे लिए कुछ है नहीं खाने के लिए, इनके लिए क्या खिलाएंगे। तो उस दिन वो जो पति गए मधुकरी से कुछ मिल जाए वही अर्पित कर देंगे अपने गुरुदेव को, और इनकी पत्नी उस अंतराल में वो गई वो उस गांव का जो जमींदार था उसके पास, क्योंकि ये जमींदार ये इसके ऊपर बुरी नजर रखा था हर समय, और हर समय वो इसके साथ शारीरिक संबंध रखना चाहता था। तो ये रामानुजाचार्य की शिष्या इनकी जो पत्नी, इन्होंने जमींदार से कहा कि आप आज के लिए मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, मुझे आप सामग्री दीजिए उनके लिए प्रसाद बनाने की, और आपकी जो भी इच्छा है वो मैं दूसरे दिन संतुष्ट कर दूंगी। तो ये जमींदार अब इतना प्रसन्न हुआ, जो कुछ उनको चाहिए था सब कुछ प्रदान किया, और इन्होंने बड़ा फीस अपने गुरुदेव के लिए बनाया। और पति वो आश्चर्यचकित, वो मधुकरी करके कुछ मिला नहीं उनको, उस दिन आके देखे इतना बड़ा फीस तैयार है, स्वयं रामानुजाचार्य वो आश्चर्यचकित रह गए। और जब इन्हें पता लगा, पति को पता लगा कि पत्नी ने ऐसा किया है, तो पति खुश हुए, वो आनंदित हुए कि हां इसे कहते हैं वास्तविक शरणागति गुरु के प्रति, कि गुरु की प्रसन्नता के लिए वो अपने आप को बेच दी। और फिर रामानुजाचार्य को जब पता लगा तो उन्होंने खाया हुआ अपना उच्चिष्ट इसको, इस महिला को दिया, अपनी शिष्या को दिया, और कहा कि उस जमींदार को जाकर ये खिलाना। और वो जमींदार जब उसने सबसे पहले ऐसी शरणागति, ऐसी गुरु भक्ति इसकी देखी, तो पहले से पिघल चुका था, वो अपने आप को कोस रहा था कि मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूं कि ये ऐसी शुद्ध महिला और इसे मैं दूषित करना चाहता हूं। और फिर जब रामानुजाचार्य का महाप्रसाद खाया, तब ये जमींदार आगे चलकर रामानुजाचार्य का शिष्य बना। तो इन सब उदाहरणों से हम क्या सीखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हालांकि पढ़ने में सुनने में बहुत आसान है, परंतु वास्तविक रूप में भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना इन उदाहरणों से हम सीखते हैं कि हां हम जानते हैं कि कौन सी सेवा करनी है हमें, कि हां जप करना है, प्रचार करना है, नियमों का पालन करना है, परंतु कुंती महारानी, गांधारी, प्रियव्रत, नित्यानंद प्रभु, शिल प्रभुपाद, जटायु, हनुमान जी, सारी वानर सेना, इनसे हम सीखते हैं सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड एट द राइट टाइम। क्योंकि माया देवी जो है, माया देवी भी हमें भ्रमित करती है राइट टाइम, सही समय, माया देवी भी समय ढूंढती है। ऐसा नहीं कि हर समय माया देवी अपना प्रकोप हमारे ऊपर रखी है। तो अगर ये उदाहरण ले कि माया देवी का प्रहार कैसे किसी के ऊपर कब होता है, भरत महाराज के ऊपर माया देवी का प्रहार कब हुआ, जब वो अकेले थे जंगल में। अब भरत महाराज जब वो राजा थे तो कितनी बार हिरणों का संग उन्होंने किया होगा, ऐसा नहीं कि पहली बार उस वन में उन्होंने हिरणों का संग किया था। तो क्यों और कब वो हिरण से आसक्त हुए? माया देवी ने सही टाइम पर वो आसक्ति जागृत की। सो माया देवी नोज द राइट टाइम टू बिविल्डर अस अजामिल। एक और उदाहरण, अजामिल को भ्रमित कब किया माया देवी ने? जब अजामिल अकेला था, जब अजामिल अकेला था और अकेले होने के कारण अजामिल ने जो दृश्य देखा उस पर वो चिंतन करने लगा। यदि अजामिल वो दृश्य सब दूसरे ब्राह्मणों के बीच में देखता तो उसे इतना वो समय नहीं मिलता उसके ऊपर चिंतन, वो चिंतन करने के वजह से फिर उसका आगे पतन हुआ। तो अजामिल को भी माया देवी ने वो दृश्य दिखाया कब? जब वो अकेला था, जैसे भरत महाराज। काल कृष्णदास, काल कृष्णदास का भी उदाहरण चैतन्य चरितामृत में है कि चैतन्य महाप्रभु का पर्सनल सर्वेंट बनकर वो गया हुआ था, परंतु जब वो चैतन्य महाप्रभु को छोड़कर वो भटाहारी उनके साथ उसने संग करना शुरू किया तो उस समय भी वो अकेला, उस समय माया देवी ने उसके ऊपर प्रहार किया। तो देखिए इन सब उदाहरणों में क्या समझ में आ रहा है कि माया देवी भी बहुत चतुर हैं। तो माया देवी यदि इतनी चतुर हैं कि वो समय देखकर वो अपने एजेंसी को भेजते, अपने एजेंट्स को भेजते हैं, तो हमें भी भगवान की सेवा उस हिसाब से करते रहना चाहिए कि ये ढूंढते रहना चाहिए कि कहां पर सबसे ज्यादा आवश्यकता है सेवा की। अक्सर हम ऐसी सेवा चुनते हैं जहां पर पहले से और 10 लोग हैं तो फिर पूरी सेवा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और जो एकदम जो मेरे लिए एकदम थोड़ा कंफर्टेबल सेवा हो, ज्यादा उसमें तकलीफ नहीं हो, मेरी स्थिति को देखते हुए, मेरे टेम्परामेंट को देखते हुए, मेरी आदतों को देखते हुए, उस हिसाब से हम वो सब सेवा चुनते हैं। परंतु वास्तविक रूप में सेवा जो कुंती महारानी यहां पर इस श्लोक में दर्शा रही है उसे कहते हैं वास्तविक शरणागति। इसलिए विदुर जी उसको याद कर रहे हैं, महात्मा विदुर वो याद करते हुए कहते हैं क्या प्रथा अभी भी जीवित है? उन्होंने इतने दिन केवल अपने पितृहीन पुत्रों के लिए जीवन धारण किया, अन्यथा उन राजऋषि पांडु के बिना उनका जीवन जीवित रहना असंभव था। सो द एसेंस ऑफ साधना भक्ति इज यज्ञ दान तप, एसेंस ऑफ यज्ञ दान तप इज टू प्लीज कृष्णा थ्रू सरेंडर, वॉलंटरी सरेंडर, एंड दैट इज शुद्ध कृष्ण भक्ति। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? तो आज शाम को एक विशेष सेमिनार जिसका शायद SMS आप लोगों को मिला भी होगा, बंबई से एक उत्तम महेश्वरी कर व्यक्ति आ रहे हैं जो कि इस सकते हैं और उनका महत्व कैसे जान सकते हैं। तो आज शाम को 7 बजे से लेके 9 बजे उनका ये सेमिनार होगा।
हरे कृष्ण भाई, थैंक यू ब्रोजी, बहुत अच्छा क्लास दिया, क्योंकि जब नासिक को जरूरत थी किसी लीडर की तो ये आपका त्याग, आप यहाँ आ गए, इसके लिए इस लिस्ट में आपका भी एक नाम जाता है। तो प्रभु जी प्रश्न ये है कि आपने कहा कि भक्तों के जब हम त्याग करते हैं तो शरणागति बढ़ती है और अभक्त जब त्याग करते हैं तो उनका अहंकार बढ़ता है, लेकिन भक्ति में कभी कभी ऐसा होता है कि हम त्याग करते हैं तो भी हमारा अहंकार बढ़ता है क्योंकि हम लोग वो स्तर पे नहीं है। और माया देवी वो समय देखती है कि जब एक साधक को हराने के लिए, जैसे जड़ भरत महाराज का आपने उदाहरण दिया, तो एक साधना भक्ति में हम जो साधना कर रहे हैं तो कैसे समझे कि हमारा जो त्याग है वो सही शरणागति की तरफ जा रहा है या फिर जो त्याग है वो अहंकार की तरफ जा रहा है?
गुरु साधु शास्त्र, जो भी हम सेवा करने के लिए योग्य बने हैं, जो भी सेवा हमें करनी है वो गुरु साधु और शास्त्र के निर्देशन में होने चाहिए। और ये सारे उदाहरण जो आज हमने लिए, ये सारे उदाहरण क्या थे? नित्यानंद प्रभु जैसे स्वयं बलराम जी, यदि उन्होंने इतने वर्षों तक एक शब्द प्रचार का नहीं किया, जब तक कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको परमिशन दिया तब तक उन्होंने वो प्रचार नहीं किया। तो गुरु साधु और शास्त्र के निर्देशन में जब हम सेवा करते हैं, जब उनके निर्देशन में प्रचार करते हैं, जो उनके निर्देशन में साधना करते हैं, तब हम सबसे सुरक्षित हैं। और जब कभी भी हम असुरक्षित अपने आप को पाते हैं तो तुरंत चेक कर लेना चाहिए ये तीन सूत्रों से कि मेरी सेवा, मेरी शरणागति क्या गुरु साधु शास्त्र के अनुसार है या नहीं, उसमें कहीं पर तो गड़बड़ हो रहा है, तभी जाकर मेरा अहंकार बढ़ रहा है। जो कुछ जैसे कि आपने ये उदाहरण दिया कि भक्ति में भी हम जब कुछ करते हैं तो हमारा अहंकार बढ़ जाता है, उसका भी डर है, हो भी जाता है। तो छठे स्कंद में उदाहरण है इंद्रदेव, और वो तो भगवान के भक्त हैं, भगवान की मिनिस्ट्री के बहुत बड़े मिनिस्टर हैं वो। तो इंद्रदेव, वो उनकी उनका सत्कार हो रहा था और उस समय उनके गुरु बृहस्पति, तो देखिए वो वहां पर भी माया देवी टाइमिंग के साथ भेजी बृहस्पति को। कौन सा टाइमिंग क्या था? जब इंद्रदेव का सत्कार हो रहा था उस समय उनके गुरु महाराज आए। तो ऐसा नहीं कि इंद्रदेव वो अपने गुरु महाराज का अपमान करना चाहते थे, वो उस ऐसी स्थिति में थे कि हो गया अपमान अनजाने में उनसे। और फिर आगे चलकर उसके परिणाम भी हुए। तो हम अपने अनुसार तो बहुत सेवा कर सकते हैं भगवान की, जैसे राधानाथ महाराज, उनके जीवन के विषय में कहा गया है कि वो जब पूरा कॉलेज प्रीचिंग एस्टैब्लिश कर दिए थे अमेरिका में, नहीं, सबसे पहले तो उन्हें यह कहा गया था कि आप जीवन भर केवल श्री राधा वृंदावन नाथ की पूजा करना, और लाइन खींच दी गई थी जैसे लक्ष्मण रेखा कि बस आपका पूरा जीवन इस लाइन के अंदर ही होगा, न्यू वृंदावन, बस इनकी सेवा। और फिर 8 साल उनकी सेवा करने के पश्चात फिर उनको कहा गया कि नहीं, अब हम चाहते हैं कि आप कॉलेज प्रीचिंग कीजिए, तो बस वो छोड़ दिया, कॉलेज प्रीचिंग किया। और ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उस समय जो वहां के लीडर थे, श्रील प्रभुपाद ने राधानाथ महाराज से कहा था, जब उन्होंने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि मेरे लिए क्या आदेश है, तो उस समय प्रभुपाद ने कहा था कि यू जस्ट फॉलो कीर्तनंद स्वामी। तो देखिए उस आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने जो कुछ उस समय के उनके लीडर, हालांकि वो उनके गॉड ब्रदर थे, वो बोल सकते थे ये तो मेरे गॉड ब्रदर हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे कुछ दीजिए डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन, तो उनका इंस्ट्रक्शन था यू बी अंडर योर एल्डर गॉड ब्रदर, डू वॉट एवर ही सेज। तो फिर उनको जब कॉलेज प्रीचिंग के लिए कहा गया तो कॉलेज प्रीचिंग शुरू किया, और पूरा कॉलेज प्रीचिंग एस्टैब्लिश होने के बाद फिर कहा गया कि अब सब छोड़ के जाओ मुंबई। तो क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने उनको ये आदेश दिया था, तो श्रील प्रभुपाद का जब उन्होंने आदेश पालन किया तब हम देखते हैं कि उनकी सफलता उन्हें जो प्राप्त हुई है। और उसे बोलते हैं सही मायने में हम शरणागत के भाव में वो त्याग को करें। तो वो त्याग जो था वो शरणागति के भाव में था, गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन में, और वही एसेंस है। त्याग का भी एसेंस वही है, गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन में त्याग या अपनाना। प्रियव्रत महाराज ने राजगद्दी को अपनाया गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन में, नित्यानंद प्रभु ने गृहस्थ आश्रम को अपनाया गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन में, श्रील प्रभुपाद ने सब कुछ छोड़ा गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन में। श्रील प्रभुपाद को सपने में भक्ति सिद्धांत आते थे, संन्यास लो संन्यास लो संन्यास लो, तो डायरेक्टली उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया था उनको। और कोई प्रश्न? नहीं, यदि जैसे कि यही मैंने राधानाथ महाराज का भी उदाहरण दिया या प्रियव्रत महाराज का भी उदाहरण, कि ठीक है वो एक सेवा में पहले से लगे हुए थे, वो भी गुरु के आदेश में ही वो सेवा कर रहे थे। जैसे मुझे जब नासिक भेजा गया तो मेरी भी यही चिंता थी कि ये इतना सब जो कॉलेज प्रीचिंग इतना बढ़ चुका है, जो भी प्रोग्राम्स में कर रहा था, ये हमारे बैठे हैं भक्त यूडीसिटी, तो मुझे चिंता थी कि वो कॉलेज में बेस खुल चुका है और इतने विद्यार्थी आ रहे हैं, प्रोग्राम इतना अच्छे से चल रहा है, क्या होगा उसका। तो मेरे अथॉरिटी ने मुझे कहा, आपको लगता है आपने किया वो? हरे कृष्णा। तो मैंने कहा तो हम ये सबसे बड़ा भ्रम है कि मेरे वजह से कुछ हो रहा है वहां पर, ये सबसे बड़ा भ्रम है। ये सबसे सटल वेपन है माया देवी का। व्हेन माया देवी पुट्स अस इन दिस कॉन्शियसनेस दैट आई एम द डूअर, इफ आई एम नॉट देयर हाउ विल इट गो ऑन। और अभी मैं जाके देखता हूं तो वो प्रोग्राम पहले से बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, तो ये मुझे संकेत मिल गया कि मेरे वहां रहने के वजह से प्रचार इतना अच्छा नहीं हो रहा था, और अभी वहां से जो भी यहां पर भेजा गया हूं तो आप लोगों का दुर्भाग्य है और उस कॉलेज का सौभाग्य है कि अच्छा प्रीचर वहां पर उनको मिला। तो आप लोग अच्छी से प्रार्थना कीजिए कि मेरा कोई अच्छा रिप्लेसमेंट यहां पर आए, तो जो भी डैमेज हुआ है वो अच्छी से रिपेयर हो जाए। सो नो वन इज इनविंसिबल इन द मिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु, नो वन इज इनविंसिबल, वी हैव टू बिकम इनविजिबल। डोंट ट्राई टू बिकम इनविंसिबल, ट्राई टू बिकम इनविजिबल। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।